الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ताकि अक्सर बातें की इन बीमारियों का सिलसिला चल रहा था जो बातें के गुना है और इस तरीके से संगीत का बड़ा लक्ष्य अपने आप को उन बीमारियों से साफ रखना है। बयान को चलते हुए अलहमद लागत आधार की रोशनी में बयान हो चुका है। अब इसका दूसरा हिस्सा जो बातनी अखलाक है जिनका हासिल करना एक इंसान के लिए इस्लाह के लिए जरूरी है उनका बयान शुरू हो रहा है। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिस तरह शहरी अमाल में कुछ फरायद वाजिबात है उसी तरह बातिन में कुछ फरायद वाजिबात है। जिस तरह जाहिर अमाल में कुछ गुनाह है और महरमात है इसी तरह बातिन में भी कुछ महरमात और नाजायज गुनाह और उनके उपकाम है। तो पहले उन गुनाहों पर काम का जिक्र हो चुका अब नोट कराए तो जिन बातनी अखलाक को हासिल करना एक मुसलमान के लिए अपने इस्लाम के लिए जरूरी है उनका बयान शुरू हो रहा है। सागर में इसका सलमान स्कूल में यह काम रखा था तहजीब यानी इंसान को तहजीब सिखलाना। उसके दो हिस्से थे एक हिस्सा मुकम्मल हो गया तहजीब का बीमारियों से बचने से काफी रोड से चली थे। दूसरा हिस्सा है फरानत आजीदात जिससे तो इसमें उन चीजों का बयान होगा कि जो इंसान को हासिल करनी चाहिए अपने बारे में। उनमें पहली चीज जिसकी हजरत ने आगाज फरमाया है वो है तौबा। और ये तौबा ऐसे नहीं है तो जो इंसान अपनी इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाए तो इसका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि वो तौबा करे अपनी सारी जिंदगी के तमाम नाजायज और बुरे कामों से। इसलिए अगर आपको तौबा से शुरू किया और इसको बातिन का अमल इसलिए करार दिया तौबा का एक मतलब तो हर इंसान जानता है कि किसी से कोई गुनाह हो गया हो तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके उस पर नदामत का इजहार करे शर्मिंदगी का इजहार करे और आइंदा के लिए उसके बचने का अहम जारी करे उसको तौबा करे। लेकिन जो कभी माना सौदा करे तो रुझु करना और लौटना, अगर लोगों ने सौदा के माना देखे जाए तो सौदा करने के लिए रुझु कर लौट कर इसी तरह लौटना अल्लाह की तरफ है, अल्लाह के लिए की तरफ लौट। अलबा कुदरत लफ्ज है जो इस्तेमाल किया गया है इस मकसद में, जैसे कोई बच्चा होता है अगर उसको कुछ वक्त कोई तकलीफ पहुंच जाए या कोई जरूरत पेश आए तो छोटा बच्चा फौरन अपनी माँ या बाप की तरफ लौटते जाता है। किसी ने अगर घर से बाहर भी अगर किसी को बच्चे को छेड़ दिया और उससे उसकी तकलीफ पहुंच गई, कौन वो आदमी को बताएगा? जानता हूँ कि यहाँ आदमी मौजूद नहीं है, माँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो प्रकार का इसी है। तो एक बंदे का ताल्लुक अल्लाह के लिए चला लेकिन उसका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इतना तो हो जैसे बच्चे को अपनी माँ से होता है। कि जहाँ कभी शैतान ने या इंसान के नफ्स ने उसको बहकाया और किसी नाजायज काम से गुनाह में मुबतला कर दिया या किसी खिला में चढ़ा बात का ख्याल देने डाल दिया समझौता आ गया तो उसको चाहिए कि फौरन अपने अल्लाह के लिए गलाने की तरफ रुझू करे। अल्लाह ये शैतान मुझे बता रहा है, अल्लाह ये मुझे परेशान कर रहा है। इस वजह से तौबा का यह इस्तेमाल किया गया है यानी अल्लाह से रुझू कर अल्लाह तआला की तरफ लौटना, अपनी हर परेशानी अल्लाह के लिए गलाने की बारगाह में पेश करना, जल्दी माने जाए तौबा। और ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी ही पसंद है कि उसका बंदा हर वक्त उसको पुकारता है, हर वक्त उसकी तरफ रुझू करता है, हर वक्त हर परेशानी हर तकलीफ उसकी बारगाह में पेश करे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे की ये आदत बहुत है। और कुरान करीम में इसको मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हुए इस सिफत को अल्लाह ताला ने बयान किया। यह अमल अब्द इन्हु अल्लाह कुरान शरीफ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में या दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो बड़े अच्छे बंदे थे, क्यों? इन्हु अल्लाह, वो हर वक्त अल्लाह ताला के तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। क्या माना? कि वो जहाँ कोई मसला पेश आया, कोई परेशानी लाई हुई, कोई तकलीफ पहुंची, कोई जरूरत पेश आई, फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते थे। इन्हु अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा फरमाया ना इब्राहिम अल हलीम अल अवाह अल मुजीब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा फरमाया कि वो बड़े बुजुर्ग थे और अल्लाह ताला की याद में बड़े आंखें भरने वाले थे और अल्लाह ताला की तरफ बड़े रुजू करने वाले थे। जितने अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्गों बंदे आए हैं उन सब ने उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कभी उनको अल्लाह फरमाया, कभी अल्लाह फरमाया, कभी मुनीब फरमाया, कभी मुखलिसीन फरमाया। इस्तेमाल उससे होता आपकी इज्जत आपकी सब का एक ही है कि आदमी अल्लाह जल्ल जलालुहु से बार बार रुजू करने वाला हो, किसी भी हालत में हो, कोई भी रुपया पेश आए जबान से या दिल से अल्लाह तआला के तरफ से देखकर हम देखे या नहीं मसला आ गया मेरे मसले हल कर दी। तो तौबा भी हकीकत में ये सब जिनके अल्फाज मैंने बताए एक बात इनाबत इन सब का जो जवाब है वो क्या है? रुजू इल्लाह अल्लाह तआला के तरफ रुजू। तो तौबा उसी की अल्फाज अलबत्ता तौबा में इतना है कि और को इनाबत या इसबात या जिस हिसाब से इस्तेमाल हुआ जाने के लिए मैं उसमें हर किसी की बात जो अल्लाह ताला के लिए कही जाए जवान से जो दिल से जो इनाबत में दाखिल है जो जवाब है आदमी वो इनाबत में दाखिल है, अल्लाह का जिक्र करे वो इनाबत में दाखिल है, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز مان لے تو انسانیت کی جو پیش کرے وہ عبادت میں داخل ہے. البتہ توبہ جو ہے وہ عبادت کی خاص شکل ہے جس میں انسان کے دل میں اپنے کسی کیے ہوئے عمل پر ندامت ہوتی ہے. یہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اس کا میں نادم ہو کر انکار ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس لیے حدیث نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما التوبہ للندم, توبہ کی جو روح ہے اور اس کا جو جوہر ہے وہ ندامت. آدمی شرمسار ہو کر نادم ہو کر اطمینان ہو کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ اللہ مجھے غلطی ہو جب انسان کو اپنے دلوں کا ندامت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور ساتھی آمدہ کے لیے اس جرم کو نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو سبق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ میں عجیب خاصیت رکھی ہے. اتنا آسان کر دیا ہے اس توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اوپر عمل کو کہ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو چکے ہیں اور کتنے بچے بڑا کیا ہو لیکن اس لمحے وہ لوگ کے دل کے ساتھ توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ میں درد ہے اور میرے سر کو کمر لا کم بڑا ایسی عجیب چیزیں لگایا گیا میرے لوگ اور ہمارا لکھایا اور ساتھ ساتھ ان شاء اللہ ہمارا پھر لوگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے دیکھو یہ میرے ساتھ کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ میں آزمائش کی خاطر انسان کے دو دشمن پیدا کر دیے ایک شیطان ایک انسان کا نفس. تو آزمائش اسی لیے ہے کہ شیطان کو بہکایا جاتا ہے نفس کو بہکایا جاتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے. یہ شیطان دو دشمن انسان کے پیدا کر دیے شیطان اور نفس جو ہم لوگ اس کو بہکاتے رہے اور گناہ پر آمادہ کرتے رہے. تو ہمارے لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو دشمن پیدا کیے تو گویا زہر پیدا کیا زہر اور اللہ جل جلالہ کی حکمت سے اور اس کی رحمت سے یہ بات بڑی تھی کہ وہ زہر کو پیدا فرمائے اور تریاق میں بتایا زہر سے پیدا کر دیا اور تریاق بتایا گیا. تو یہ اللہ کی رحمت سے بھی بھائی اللہ کی حکمت سے بھی بھائی. اور اگر تریاق ایسا دیا جاتا بندے کو کہ اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا, پیسے خرچ کرنے پڑتے, سفر کرنا پڑتا, دوڑ دھوپ کرنی پڑتی, تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید تھا کہ ایسا پریاس مہیا کرے. وہ جو فارسی میں مثل مشہور ہے کہ سات پریا کا گرا کاغذ کا سبق مان کو بھی ڈبل کر رہے یعنی مشہور تھا کہ اگر کسی کو سانس کاٹ دے اور سانس کا غیر کر جائے تو اس کا پریا کہتے عراق میں ہو جاتا عراق جانا پڑتا ہے. تو فارسی میں مثل مشہور ہو گئی کہ جتنے عراق سے پریا آئے گا اتنا وہ جس کو سانس ڈرتا ہے وہ دنیا سے اوپر بھی ہو جائے. تو وہ پریا اگر ایسا دے دیتے کہ جس کو لانے کے لیے کوئی لمبا سفر کرنا پڑتا تو محنت مشقت اٹھانی پڑتی تو پریا کا فائدہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان پریا دے دیا شیطان کا بھی ادب کر کہ شیطان تو بے شک پیدا کر دیا, اس کو بہتانے کی طاقت بھی دے دی, نفس کا خواہش بھی پیدا کر دی, لیکن پریا ان دونوں کا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ تمہیں کہتے اور یہ تمہارے اوپر حملہ آ رہا ہو فوراً ہماری طرف رجوع کر لو منصوبے باندھے تھے تمہیں گمراہ کرنے کے بہکانے کے اور تمہیں سلچا کے مستقبل سے ڈر لگانے کے جتنے طریقے اس نے کیا جیسے سب دھرام سے زمین کر دیتے
اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے گزار کر لیں نماز کے بعد تو
जो ये सरकार खुद इबादत की कुर्बानी ना करे दूर कर देता है। इसी बात के हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मंसूर है कि आप हर नमाज के बाद तीन मरतबा फरमा देते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह अकबर, आप जरा तसव्वुर कीजिए, ये भी आपकी नमाज नहीं हुई है, ये सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है जिसके बेहतर और जिस ज्यादा हसीन नमाज किसी और की इस कायनात में हो नहीं सकती। लेकिन आप भी नमाज पढ़ने के बाद करवाए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या माना ज्यादा इबादत तो कर ली मैंने आपकी तौफीक से, नमाज करी, लेकिन नमाज का जो हक था अल्लाह वो अदा ना करता। जैसे सारे बारे में बताए कि नमाज का हक मुझसे अदा ना हुआ, लिहाजा अल्लाह ने आपसे मफरत मांगा। इसके बाद सिर्फ गुनाही से नबी करीम को गुनाह से मापो, आपके गुनाह चलकर हो नहीं सकता। लेकिन इबादतों में जो कमी को चाहिए रह गई है उसके तलाशी का भी यही रास्ता है कि आपने फिर अल्लाह तारा बताया आगे बढ़कर क्या कहते हैं अल्लाह कैसे इबादत करनी चाहिए थी मुझसे करनी पहला लोग मफरत मांग ये बताया चलता है। फिर इसके बाद की कसरत और तौबा की कसरत इस लिहाज से भी जरूरी है कि देखो इस कायनात में इंसान को जितने मुश्किल पेश आती है या मुसीबतें आती या मसाइल खड़े होते हैं कि वो हकीकत में अदर देखो तो पुराने करीब जो फरमाता है कि ये तुम्हारे ही किसी न किसी बुरे अमल का नतीजा है। मुसीबतन कदमा कैसा का खाई थी पहले आपको अंदर थी जो मुसीबत तुम्हें इसका आना के पास किया वो तुम्हारे ही किसी अमल के नतीजे में पहुंच गई है। कोई बड़ा अमल हुई है, कोई बड़ा काम हुआ है जिसके नतीजे में ये मुसीबत आ गई हुई बड़ा पास इंसान को एहसास भी नहीं होता इसीलिए मंसूर है कि जब सवाल के दरमियान सही कर रहे हो वो जो दो पत्थर है जिनके दरमियान दौड़ा जाता है तो उसमें मंसूर है ये दुआ पढ़ते दिल फिर बढ़ा हमारी गुना माफ करवा दीजिए, हमें माफ करवा दीजिए, हम सब कर्म करवाइए और वो गुना माफ करवा दीजिए तो आपके इल्म में यानी आप आपके गुना ऐसे हैं कि जो आप जानते हैं कि हमसे वो है वो हम नहीं जानते हमें एहसास नहीं हमें जरूर नहीं लिहाजा अल्लाह आप हमसे वो गुना माफ करवा दीजिए जो आपके इल्म में है क्या हमसे कर दूंगे। बहुत से गुना इंसान के ऐसे बड़ी गलतियाँ होती है जो सजग होती रहती है एहसास नहीं होता तो इस वास्ते नतीजे मुसीबत आ जाती है तो मसला खड़ा हो जाता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया ये बड़े काम की बात कर रहा हूँ बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कभी कोई मसला पेश आए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए मुश्किल दूर करने की दुआ बाद में मांगो इस्तिग़फ़ार पहले करो पहले इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से गुनाह माफ इस्तिग़फ़ार करो और फिर दुआ मांगो कि अल्लाह मुश्किल तकदीर का भी दूर करवा दीजिए ये मुश्किल दूर करना अल्लाह बचाए बार लोगों की जबान पर किस्म के कलमात आ जाते हैं कोई मिस्ट्री में मुबतला हो गए, कोई मुसीबत पड़ गई, तो जो जुमला जबान पर आ जाता है तो पता नहीं हम किस गुना में पकड़े गए, ये जुमला जबान पर आ जाता है। अल्लाह ऐसा कौन सा जिससे गुना हो गया जिससे ये पकड़ा गया, इसलिए अल्लाह बताएंगे बड़ा मुस्ताफी का बे अदबी का जुमला है, उसमें शिकवा को जुमला है अपने आप को तो गुनाहों से पाक तसव्वुर कर लिया और शिकायत हो रही अल्लाह की तकदीर से कि अल्लाह मुझे पता नहीं गुनाह में आपको पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो गुनाह है इससे हमेशा परहेज करना चाहिए। अरे तुम्हें क्या पता क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, तुम्हारी जबान से, तुम्हारी आंख से, तुम्हारे हाथ पांव से, तुम्हारे आमाल से क्या क्या गुनाह कर रहे हैं। तो इस वास्ते जब कभी कोई दूसरी बताए, कोई कहने वाले आए तो पहले बात करो या अल्लाह मुझे माफ करवा दीजिए, पता नहीं मुझे क्या क्या गुनाह हुए हैं, इसलिए हुए हैं जिसकी वजह से मैं इन मुश्किल का शिकार हूँ, अल्लाह के रहमत से मुझे माफ करवा दीजिए। जो अनु मुझसे आज ये मैं सही बुखारी में सबक में हदीस आई थी, वहाँ पर अल्लाह को बता रहा था कि हजरत आयशा से देखा रजी अल्लाह का रहा था, रियायत करते हैं कि एक मरतबा उन्होंने अपने घर में एक पर्दा जाके लटका दिया था दीवार पे जिसका तस्वीर बनी हुई थी, घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी जिसे औरतों को खाई करती है अपने घर को सजाने की, आशा से दिखा दे रहा है कभी कहीं से पर्दा ले आए और लाकर अपने घर के अंदर डाल दिया। इस पर्दे पर की तस्वीर और जानदार की तस्वीर अपने घर में लटकाना ये नाजायज है, मैं आशा को बता रही कि ये कोई नाजायज काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये करीम तशरीफ लाए तो आपने देखा पर्दा रखा हुआ है और उसके ऊपर तस्वीर है, तो आप नहीं खड़े हो गए और घर में दाखिल होने से आपने इनकार कर दिया और चेहरे मुबारक पर नाराजगी और नागवारी के आसार हृदय चले गए थे, आप नाराज हुए। अब अच्छा तो पता बताने से ये क्योंकि वो जानते नहीं थे कि तस्वीर की हरमत की बात होने से नहीं चुके ना, तो ये लटकाना ना जाएगा महंगाई परेशान हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं और घर में दाखिल नहीं हो रहे। तो रिवायत में आता है कि पहले हमारे जुमला कहा मुझे कि मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करती हूँ, इस्तग़फ़ार करती हूँ, मुझे मुझे बता दीजिए कि क्या गुनाह हुआ है जिसकी बिना पर आप नाराज हैं, यानी ये बात आपने पूछी कि गुनाह क्या है इसके पास पहले किया, यह अदब है आयत के जिक्र से लाता है लाता ना हम जगह पर होगा तो पूछा से पहले बताइए सही कि नाराजगी की ये बात की है, फिर बाद में ताकत बता कर, लेकिन अगर वो कहती तो मैंने क्या गुनाह किया है तो इसमें शिकवे का पहलू हो सकता था कि भाई आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया, लिहाजा पहले इस्तग़फ़ार किया कि अल्लाह मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करती हूँ, मफ़रत मांगती हूँ, मुझे बताई जाए तो हालांकि पता नहीं था कितना गुनाह हुआ लेकिन इस्तग़फ़ार पहले किया अल्लाह से जिक्र दिला कर, यह है मोमिन का काम। कोई मुश्किल पेश आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके इस्तग़फ़ार करें, फिर दुआ मांगे। और ये भी बुजुर्गों ने फरमाया कोई बागार या हम जैसे तालिबे को ये मसला बरकत पेश आता रहता है تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, مطالعہ کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی سوال دل میں آیا ہے اس کا جواب نہیں مل رہا, کوئی سوال پیدا ہوا ہے اس کا حل نہیں سمجھ میں آ رہا. تو وہاں بھی ذکر کر فرمایا کہ پہلے استغفار کرو, پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے. کیوں؟ اس بات سے کہ دفاع اوقات باپ کا صحیح سمجھ میں نہ آنا یہ گناہوں کی نزولت ہوتی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ بتا انسان کیا اثر اونجی ہو جاتی ہے, سمجھ میں صحیح بات نہیں آتی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے گناہ سے. یار ہمارا بتایا عمل یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, استغفار کر کے پھر کہو کہ اللہ میں مدد کروں گا, یار مجھے ہیلپ کرنا. اس طرح آپ نے دیکھا کہ استغفار جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ جو متعین گناہ ہوئے ہیں ان کو بس بار بار استغفار ہے, لیکن عبادتوں کی کوتاہی پر استغفار, مسائل آ رہے ہیں تکلیف جا رہی ہیں ان پر استغفار, اور کوئی مشکل پیش آ رہی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس پر استغفار, یہ ہر جگہ کام آنے والی چیز استغفار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے معصوم ذات جس نے کبھی کوئی گناہ کر دیا نہ ہونے کا کوئی انسان, اور اگر وہ بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام اعلان کیا گئی کسی سب بھول چوک آپ کی معاف کر دیے. اس کے باوجود پھر آیات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں جن میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کر استغفار ہو رہا ہے اس بات پر کہ اس بات جو جو اللہ تعالیٰ بتایا کہ معرفت بڑھتی جاتی ہے, جو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت نہ عرفنا کا حق کا معرفت, اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کرتا ہے, اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کرتا ہے. ہر وقت ہر آن ہر کام کے لیے یہ چیز اس بات کے بھائی یہ پودا کے جو الفاظ ہیں رنگ گئی یہ انسان کو اپنا ضد اور وظیفہ بنانا چاہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہو جائے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت عطا فرمائی اور استغفار سے بھی یہ تو آدمی مانگتا ہی ہے, اللہ تعالیٰ سے جن سال میں مانگ لو یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے, یا اللہ مجھے بخش دیجیے, یا اللہ میرے توبہ قبول فرما دیجیے, لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو قرآن نے سکھایا میرے پروردگار میری مفرت کرنا مجھ پر رحم کرنا اور تو سارے رحم کروانے والوں میں سب سے بہتر رحم کروانے والا ہے. یہ الفاظ بتا دیا اللہ تعالیٰ سب دل پھر رہا قرآن کا پھر بڑا ہے کیوں سکھا رہے اللہ تعالیٰ بتا رہے اگر رد کرنا ہوگا اور یہ درخواست ماننی نہ ہوتی تو کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو یہ کہا ہم دل پھر رہا مانتا ہے وہ آدمی سکھا رہے ہیں تو یقیناً ان الفاظ میں کوئی ایسی تاثیر ہے جس کی بنا پر سکھایا جا رہا ہے کہ رب دل پھر رہا مانتا ہے وہ آدمی لکھاؤ یہ کہو گے تو ہماری طرف سے معافی کا کروانا ملے گا, ہماری طرف سے تمہارے درجات کرے گا. اور یہ بھی آپ نے بات پڑا ہوگا کہ تمہارا سب سے پہلا گناہ ہوا یہ سب سے پہلے غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے گندم کھانے کے سلسلے میں, تب ان سے لگائی تھا تو کیا کہیں کیسے معافی مانگ وہ کلمے جن کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اگر آپ معاف نہیں کریں گے یا ہم نہیں فرمائیں گے ہمیں سب کا سارا لائف یہ الفاظ کچھ سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن شریف میں سکھائے گئے الفاظ ہیں، جو قرآن سے سکھائے گئے الفاظ ہیں ان میں خاص طور پر یہ زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ یہ توبہ اور استغفار قبول ہے، الفاظ میں قبول زیادہ ہوگا، اس واسطے ان الفاظ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں توبہ استغفار سے، اس کے بعد کیونکہ آپ کی رائے مطابق کر جو الفاظ میں جاری ہو رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہو رہی ہے، ان اللہ رکھ لو یہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہی وہی کے الفاظ ہیں، وہی ادارے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں ادارے جو ڈالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ استغفار سے وہ کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ استغفار کرے گا حضور سے ثابت، اور ان میں سب سے زیادہ معاشرے وہ ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سید الاستغفار بتائیے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے اقرار و ربوب ان کلمات میں پوشیدہ ہیں، ہم لوگ اس کا ادراک کرنے سے آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کرنا تمام استغفارات کا سردار، اللہ مانتا ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا سبحانہ خلقتنی وانا سبحانہ عبدکا وعلا عبدکا وعبدکا مستقاب بالآخر یہ سید الاستغفار ہر مسلمان کو یاد کرنے رکھے ہر نماز کے بعد اسے کر لیے تو یہ فرمایا کہ اگر بعض علاقے میں آتا ہے کہ اگر سمندر کے کنارے جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جو کلمات استغفار کے قرآن نے بتا دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے تو ان میں انشاءاللہ قبولیت سے زیادہ طلب ہو، اور ہر اس موقع پر جو میں نے آج تمام مواقع پر توبہ استغفار کی اچھی پابندی انسان کرے تو یہ عبادت کا یہ خاص حصہ ہے، اس لیے آپ کا نام توبہ رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اب یہ توبہ کے بارے میں کچھ حضرت علیہ صلی اللہ تعالیٰ کے روح کے کچھ اشارات ہیں تو وہ پہلا منقول یہ منقول ہے کہ ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ ہر ہفتے توبہ کرتا ہوں لیکن ایک دن کے بعد سارا پہیا لگانا غارت ہو جاتا ہے، یعنی سچے دل سے توبہ کری استغفار کر لیا اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی اور سارے توبہ کے اندر یہ بھی راخی کا جیسا میں نے کیا تھا ایک تو ندامت ہو دوسرے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ ہو انسان کا، تو وہ کہتے ہیں دل میں یہ ارادہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کرے گا انسان، لیکن ایک دن گزرا اور وہ سارا ارادہ ارادہ کے خواب میں مل جاتا ہے غارت ہو جاتا ہے اور وہ تہیا کیا تھا کہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا پھر مبتلا ہو جاتا ہے، کیا کروں یہ پوچھا حضرت والا سے، اور یہ وہ بات ہے جو ہم جیسے مبتدیوں کو جیسے ہر ایک کو تیار جب آدمی اسلام کے راستے میں قدم رکھتا ہے तो शुरू में जैसे खरोच भी होता है और व्याकल निकाल सकता होता है और फिर भी चाहता है कि मैं क्या कर लूँ, चौका भी मुकम्मल कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक जो चार वो बहसा होने लगती है और चिमुकला हो जाता है। आजकल खासतौर पर हमारे जैसे हालात में जो चारों तरफ फैले हुए हैं उसमें आदमी इरादा करता है कि बचूंगा, लेकिन बाबा कभी इरादा नहीं कर लिया, लेकिन फिर तो मंजर सामने आ गया कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई तो बैठ गया आगे पूरा इस दिन को बात हजरत से पूछ रहे हैं। मैं हद से दावा करता हूँ लेकिन एक दिन के बाद सारा काहिया गायब हो जाता है। हजरत ने उसके जवाब में शेर लिखे पार्थी ले क्योंकि लिखने वाला सवाल करने वाला हमारे बता कोई बयान लिखा आदमी का तो शेर लिखे क्या शेर लिखा मैं जानी का शेर तो सूफी ने सलत पार्थी का दिल न कहकर जानी जामी का है और उसमें उसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स जो तसव्वुफ के रास्ते पर चले वो सियासी नहीं बनता यानी जामी नहीं बनता जब तक के कुछ रगड़े न खाए और दूसरा मतलब इसका यह हो सकता है जब तक के कोई आदमी जब कोई शरबत होता है शरबत तो उसके अंदर नीचे कैटिक होती है यानी मट्टी वट्टी नीचे आ जाती है तो उसके बाद कैटिक भी जब तक नहीं पिएगा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता और दुखियार सफर का ऐसा करते शरबत खान है बड़े सफर करने पड़ते हैं तब जाकर खामी जो है वो दूर होती है। यानी मतलब ये कि ये ना समझो कि आज तुमने सफर शुरू किया कि एक ही छलांग में पहुंच जाओगे मंजिल तक। अरे मंजिल तब पहुंचने के लिए कुछ थोड़ी सी मशक्कत भी उठानी पड़ेगी और उसमें कुछ गिरना पड़ना भी पड़ेगा। तो इस बात से ये न समझो कि एक ही लम्हे में पहुंच जाओगे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि मायूस होगा और हिम्मत हार करना कहते चलते रहो और गिरते रहो, गिर गए फिर उठ जाओ फिर चलने शुरू कर दो, फिर गिर गए फिर उठ जाओ फिर चलने शुरू कर दो, हिम्मत ना हारो मायूस ना हो।
ऐसा है अपने ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, कभी एक खामी सामने आएगी उसको दूर करना होगा, तो दूसरी खामी सामने आएगी उसको दूर करना होगा और आखिर दम तक समाज सारे नहीं बैठना, गलतियां होती रहेंगी और उनको दूर करते रहो, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो और इस्लाम की फिक्र न छोड़ो, इस्लाम की कोशिश न छोड़ो। एक दिन इंशाल्लाह पहुंच जाए ये शेर लिखने के बाद ने एक जुमला लिखा हासिल यह है यानी इन तमाम शेरों का और उनके सवाल का जवाब यह है कि फिक्र और कोशिश जारी रखना चाहिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी हो जाएगी। मुझे इंसान के लिए खतरनाक बात है वो यह है कि इस किस्म की सूरत हाल से इंसान मायूस हो गए आगे बैठ जाए तो मैं बड़ी पड़ा या अगर बड़ी पड़ा तो हमारा उसे समुदाय की जरूरत क्या है मैं तो सही काम कर रहा हूँ लिहाजा बस अच्छे ही छोड़ो कुछ ही छोड़ो बस ये है कि शैतान का धोखा है अरे फरमाते अगर ये पापा कर रहा हो फिर टूट जाती है जब इंसान इस्लाम के रास्ते पर चलता है तो उसमें और शैतान और नफ्स में कुश्ती होती है कुश्ती है और कुश्ती में कभी इसलिए भाग लिया कभी इसलिए भाग सही मजबूत आदमी किया इसके इसलिए मैं शैतान ने बताया शैतान की बात को रद्द कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि मानी को बता दिया मेरे बच्चे नहीं होगा ये सब कुछ आधा आदमी के साथ खेले और आधा आदमी के साथ खेले होकर फिर तो लगा दो अगर तुम्हारा बता दीजिए बाहर जाने और फिर सबका आदमी करे और कैसे रहो ये देखते हैं तो मेरा बंदा इस्तेमालत के साथ चल रहा है और जिसे पढ़ने की परवाह नहीं कर रहा हाँ बाहर मेरी तरफ रुझु करता है और नीयत इसकी इखलास के साथ मेरे रास्ते पर चल रही है तो अल्लाह ताला रखता है मंजिल तक पहुँचा देते हैं लेकिन जैसे आदमी कोई नए रास्ते पर चले तो कभी गिर भी जाएगा फिर भी जाएगा लेकिन फिर खतरा फिर चलना शुरू करें तो अल्लाह तुम्हारे धारा पहुँचा दे लेकिन बाबा का तो फिक्र और कोशिश नहीं फिक्र कर और अपनी गलत से अपने से गलत है जो गलत काम हुआ है उस पर सीधे जो भी ना करें उसको गाय बना करने की जिक्र ना करें अल्लाह बचा ये खतरनाक रास्ता है कोई प्यार नहीं फिर और दूसरे मायूस ना हो दो काम जो करें और कर पाए यहाँ अच्छे नबी सही खाता किताबों में अजीब आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ अकल का तरीके का अंतर लाइन आधा ब्याह करना था ऐसे नहीं रहना था ऐसे ना था ऐसे लगा कि अगर एक आदमी इसके बाल करने का आदि है इसके बाल करते है अगर एक अंतर करते आदि उसने गुण किया अगर तो इसके बाल करता रहा तो वो गुनाहों का इकरार करने वाले में नहीं लिखा जाए हर मतलब नया आदमी कर रहा है करीब कर रहा है मायूसी की बात नहीं है जितनी मतलब डूब जाए बनाए देखने में तो उसके पार के खिलाफ काम हो जाए फिर भी गुजार आ जाए बाबा बाबा हर जाती बाबा ये ठाकुर जब जिसमती बाबा की जल जाए माँ जल जाए नौमी जी में तो इंशाल्लाह ये अमल करोगे और ये मेरा हो गए फिर कोशिश के साथ चाहे तुम्हारे काले में दिक्कत ना जाए इंशाल्लाह अल्लाह ने जो काम दिया ही है काम के लिए सौदा दी है काम के लिए अगर से पार में कुछ भी बर्फ नहीं होगा और बड़ा आसान काम है लेकिन बहुत भूल काम भूल जाता है। आइए जो हम सबके बात कही जाती है इस प्रकार के शरीर दिख रही उसकी आमेद दिख रही समझ में आ गई लेकिन जब आगे का लग आया तो अमल निर्मरा मिल जाते हालत में खास किसी वक्त में कर रहे हैं वक्त याद न रह सके अलग आदमी एक और बात हम जैसे कमजोर लोगों के लिए बड़ी काम की बात है। इससे पहले दूसरी बात है फरमाया हर प्यारा का इस्तेमाल है तंदूरी में बच्चा का अगर गुलाम खाने हो जाए तो फौरन दो रकत नमाज तौबा के लिए फिर तौबा करें यानी आदमी अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि अगर कभी गुनाह होगा तो जब गुनाह होगा तो फौरन तौबा फिर जबान से फिर जबान से तौबा नहीं करेगा लेकिन दो रकत सलाह के तौबा की भी ऐसे करेगा समझते हैं कि इस तरह तौबा करने में मुताबिक मजा आते हैं। नंबर एक बड़ी मजा आती है यातना के युद्ध भी लगते हैं गरीब ने समा है कि नेकियां जो है वो गुनाहों को जाहिर कर देती है गुनाहों का असर जाहिर कर देती है। तो गुनाह हुआ नमाज पढ़ी तो नमाज से भी कुछ गुनाह व्यक्त गुनाते हैं जिनका बटवारा नमाज भी हो जाएगा। एक बात यही है दूसरा बात यह है कि नमाज के बाद तौबा करने में दिल आगे होगा और कबूल तौबा के लिए बुजुर्ग रखाई जरूरी है। नमाज के बाद कल्याण तबाही जी लेकर कल्याण तो ज्यादा हजूर कल हासिल होगा और तौबा की हजूर होने के लिए दिल का हासिल होना बड़ा जरूरी है। तो नमाज उसमें हाजिर होगी जो आप तीसरा फायदा फरमा यह है कि चूंकि नफ्स को नमाज साफ है इसलिए नफ्स गुनाहों से दरवाजा के कहाँ के लिए कर लेगी जब तुमने ये इरादा कर लिया कि जब कभी गुनाह होगा फिर तो अल्लाह बताए गुनाह आजकल जो जिसमें इतना आम है आँख का गुनाह तो अब तुमने क्या कर लिया कि अगर आँख गलत बराबर पड़ेगी तो इसलिए सारा इस्तेमाल करने के लिए मैं दौड़ करना पड़ूंगा। ये क्या कर लिया आपके दिल में दुआ कर रहे हैं लागू कर दो सारे पार्टी पहली बात के लिए राजनाथ ये भी देख लिया और दूसरा ये यही हाजिर होगा तीसरा ये अब जब कभी गुनाह का इस गुनाह का मौका आएगा तो उस वक्त में दिल को थोड़ा सा झिझक पैदा होगी कि भाई ये अगर करूँगा तो दो रखे से बनी पड़ेगी और इसे अब जो है वो साफ है उसको ऐसा जो चीज है आज इसकी रख जाए वो इसको प्राप्त कर ले तो भाई
लेकिन जब पैदा करी तो हम
जाते करेंगे। इसको अब ये नहीं बताया वो अल्लाह ताला की रहमत से मिल जाते तो खत्म हो गया। जब अल्लाह ने माफ कर दिया बल्कि जैसा मैंने अल्लाह के नाम है अमाल से मिटा दिया, अब उसको बार बार याद करने की तो बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हकीकत नाशनाश लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि गुनाह को याद किया करो। हमारे जानने वाले थे उनको वैसे इशारे की थी गैर भाग के तीन से मरीज हो गए थे तो जो ऐसे जिक्र आ गया तो मैंने कभी क्या वजीवा तुम्हें बताया मैंने लगे कि वजीवा बताया कि ताजुब में उठ के जितने गुना माजी में तुम्हें वो सब याद किया करो और याद करते रहा करो। अजीब वजीवा बता दिया उसका अब वो क्या बैठ के सुबह को ताजुब में उठे और उठते बस पीछे सारे गुना याद किए। अब मैंने कहा भाई गुना भी कोई ऐसी ऐसा वजीफा है उसका जिक्र करना कोई बरकत की चीज है याद कर सकते बेहतर है। अरे भाई अल्लाह तुम्हारे मुताल की बारगाह में एक मरतबा पैदा कर रहे हो खूब अच्छी तरह रोज एक जल के रात है हाजरी के साथ जर्रोदारी के साथ और जो दावत के जितने आदाब हैं वो सारे पूरे कर लो। जब कर लिए अब भूल जाओ इस गुनाह को जिससे पैदा अब याद ना करो बार बार घटना लगाओ तो माफ कर दो या उस गुना को माफ कर दो मांगो या सारे गुना माफ कर दो लेकिन उस खास गुना का नाम लेकर अब उसको बार बार न मांगो। ये अल्लाह से बारक बताया कि बारगाह में एक तरह की बेअदबी है जो उसी गुना के लिए लगाए हुए दोबारा। अब जरा सोचो क्या है एक आदमी तुम्हारी कोई हो गई गलती और वो आके उसने छठे दिल से माफी मांग लिया था तो मुझे माफ कर दो आप लोग सिर्फ मान जाए तो मुझे माफ कर दिया तुम्हें माफ कर दिया दिल से नहीं साफ हो गया माफ कर दिया अरे मेरी माफ करो कहते हैं माफ अच्छा आ रहा है माफ करो बार बार उसी किरण लगाए हुए तो ये हमाकत नहीं पहुंचा है। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक मरतबा किसी गुनाह को पेश करके उस पर माफी तलब करी और अल्लाह ने वादा फरमा लिया तो मेरे माफ कर कुरान में हदीस में अल्लाह तबारक अब उसको याद करने की फिक्र ना करो उसको बार बार उसको लगाने की फिक्र ना करो हम गुना मांगो हम मुद्दा मांगो या अल्लाह मेरे सारे गुना माफ करवा दिए हम जो गुना करवा दें लेकिन उस खास गुना को याद करो याद करने करो और कोशिश करो कि भूल ही जाओ ये जब भी ऐसा बोला उसको याद ही ना करो तो इसलिए कि जितने मरतबा को याद आएगा या तुम याद करोगे दिल में अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक में हिजाब पैदा करेगा हिजाब पैदा करेगा जो काम का ये हिजाब रखते उसको याद ना करो बस समझो कि अल्लाह तबारक व तआला के आने से इंशाल्लाह माफ हो गया और मेरे नाम है आवाज से मिटा दिया। इसलिए अगर फरमाते हैं गुना तौबा में तो गुना याद करे मगर तौबा के बाद फिर उसको याद ना करे बल्कि दिल से निकाल दे। और शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि गुना माफ होने की एक अलामत यह है कि वो गुना दिल से मिट जाए और जब तक वो मिटेगा नहीं कल पर वैसे सवाल है ये उस गुना की सजा है। इसकी शरण में बताया के तरीक का एहसास है कि गुना के बाद की बैठे तौबा कर ले और उसको जान जान कर याद न करे कि इससे बंदे और गुना के दरमियान एक हिजाब का आलू होने लगता है जो मोहब्बत और तरफ की जमा है जिसका असर यह होगा कि वहां पर भी अदा में कमी होगी जो भी जगह और समराब के तौर पर अमल पर होता है हाँ वो अमल जमाने का हो या दिल का हो लेकिन अगर वो गुना खुद याद आ जाए तो फिर तेजी दे इस सिर्फ उसे याद तो नहीं किया लेकिन आ गया यार, एक प्यार आ गया, उसका प्यार आ गया। तो फरमाया उस वक्त तंजीद कर ले बात। ये ऐसा ही है जैसा कि फरमाया गया कि जब इंसान को कोई मुसीबत पेश आए या नागवार मामला को पेश आए तो इतना लीला लगाने लगे ऊपर में उसे तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर बाद में तो मुसीबत किस वक्त आ जाते तो उसके याद आने पर भी लीला पड़े। उसी तरह अगर फरमाते हैं कि एक मतलब का हुआ करिए अपनी तरफ से याद ना करो, अपनी तरफ से उसको दिल में न लाओ, लेकिन अगर खुद बखुद उसका ख्याल दिल में आ जाए किसी वक्त तो उसे दोबारा इस्तेमाल करो, तजदीद कर रहे उसके बारे में, लेकिन अपनी तरफ से उसको दिल में लाने की जरूरत नहीं। लोग भाई आज इतने अल्लाह तआला के द्वारा बयान से इस कानून की तरफ का फरमान है।
अल्लाह हमें अपने अंदर का हमारे अंदर का हमारे दूर करवा दीजिए।
عالم الاخلاق تمام بتاعت الله لا كل حاجه ما فيش احنا غالبين انا ابن دراوتي يقول لك حاجه كذا يا الله انا كنت بقدر يعني ما لي على التعارض في الحلف بس انت لا انت على المستقبل ما خلصت ما بيجي يا احنا غالبين يا يا الكبيرين يا احنا الكبيرين يا جد على الكبيرين يا احنا الدنيا يا رحيم ربنا يا احنا كلنا يا رحيم في الانتقال يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.